एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जर्मन लेखक की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसा नाम जिनके शब्दों ने, आप कह सकते हैं, विचारों की दुनिया में काफी हलचल मचाई, थॉमस मान।
हाँ बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे, उपन्यासकार, सामाजिक आलोचक, कई पहचाने हैं उनकी।
सही कहा। और थॉमस मान 1875-1955, उनका जीवन सिर्फ एक लेखक का जीवन नहीं था, वो एक ऐसे युग में जी रहे थे जब दुनिया मतलब पूरी तरह बदल रही थी।
बिल्कुल, आप सोचिए, एकीकृत जर्मनी का उदय, फिर दो दो विश्व युद्ध, फासीवाद का वो भयानक दौर, शीत युद्ध की शुरुआत, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। तो वो सिर्फ लेखक नहीं थे, एक तरह से अपने युग के, खासकर यूरोपीय सभ्यता के संकट के साहित्यिक गवाह थे।
और यही वजह है कि उनकी रचनाएं आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। संस्कृति, राजनीति, इंसान का मन, ये सब कितना जटिल है। तो चलिए आज इस महान विचारक के जीवन और उनके जरूरी विचारों को समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, और देखते हैं कि वो आज हमारे लिए क्यों इतने प्रासंगिक हैं।
तो शुरुआत करते हैं उनके समय से। वो किस तरह के जर्मनी में पैदा हुए और बड़े हुए? ग्रुंडरजाइट का जिक्र आता है अक्सर।
हाँ, ग्रुंडरजाइट।
ग्रुंडरजाइट
ये जर्मनी के एकीकरण के बाद का दौर था, 19वीं सदी का आखिरी हिस्सा। एक तरफ तो मतलब औद्योगिक तरक्की हो रही थी, राष्ट्रीय गौरव की भावना थी, और जो बुर्जुआ वर्ग था, मध्यम वर्ग, उसमें गजब का आत्मविश्वास था। ऐसा लगता था सब कुछ सेट है, व्यवस्थित है।
लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सतह के नीचे शायद कुछ और पक रहा था। उनके लेखन में वो एक बेचैनी सी लगती है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही तो खास बात है मान की। ऊपर से सब ठीक ठाक, आत्मविश्वास से भरा, पर अंदर ही अंदर दार्शनिक शोपेनहावर का निराशावाद कि जीवन तो बस इच्छाओं और दुखों का खेल है। और जुनून, अराजकता यानी डायोनीसियन, इनके टकराव की बात कर रहे थे। ये दोनों धाराएं, ये निराशावाद और ये क्रांतिकारी सोच, ये उस ऊपरी आत्मविश्वास के नीचे उबल रही थीं, और मान ने इस तनाव को बहुत बारीकी से महसूस किया।
और इसका असर उनके लेखन पर पड़ा?
गहरा असर पड़ा, यही उनके लेखन का आधार बना, ये द्वंद्व।
अच्छा, और उस समय साहित्य में क्या चल रहा था? मतलब लिटरेरी सीन कैसा था? किनसे वो प्रभावित हो रहे थे?
देखिए, उस समय साहित्य में मुख्य रूप से दो ट्रेंड्स थे। एक था प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, जो जिंदगी की कड़वी सच्चाई, उसके अंधेरे कोनों को बिना किसी झिझक के दिखाता था, जैसे इब्सन के नाटक या जोला के उपन्यास।
हाँ।
और दूसरा था प्रतीकवाद, सिंबलिज्म, जहां हर चीज का एक गहरा छुपा हुआ मतलब होता था। मान ने इन दोनों से सीखा, पर अपनी राह अलग बनाई। उन्होंने यथार्थवाद को लिया, पर उसमें मनोवैज्ञानिक गहराई डाली, और साथ में विडंबना मतलब आयरनी और मिथकों का इस्तेमाल किया। बहुत अनूठा मिश्रण था ये।
आपने नीचे का जिक्र किया, और कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें बहुत प्रभावित किया? कलाकार, विचारक?
वो खुद तीन लोगों को अपने तीन सितारे कहते थे। एक तो संगीतकार रिचर्ड वाग्नर,
अच्छा, वाग्नर।
हाँ, दूसरे दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर, और तीसरे फ्रेडरिक नीत्शे। वाग्नर से उन्होंने क्या लिया? एक तो वो संगीत का नाटकीय ढांचा, और दूसरा लाइट मोटिव का इस्तेमाल।
लाइट मोटिव, ये क्या है?
लाइट मोटिव मतलब संगीत का कोई छोटा सा टुकड़ा या कोई धुन जो बार बार आती है और किसी खास किरदार, विचार या भावना से जुड़ जाती है। मान ने यही तकनीक अपने उपन्यासों में शब्दों और वाक्यों के साथ इस्तेमाल की।
दिलचस्प। और शोपेनहावर और नीचे से?
शोपेनहावर से जीवन की जो एक अंतर्निहित इच्छा शक्ति है और उससे जुड़े दुख और निराशा का नजरिया लिया, और नीचे से, जैसा हमने कहा, वो व्यवस्था बनाम अराजकता, या कहें अनुशासित नागरिक बनाम पीड़ित संवेदनशील कलाकार। ये जो द्वंद है, ये उनके काम का केंद्रीय तत्व बन गया।
और फिर आया पहला विश्व युद्ध, उसका क्या असर हुआ उनपे? सुना है शुरुआत में उनके विचार काफी अलग थे।
हाँ, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी जिंदगी में। पहले विश्व युद्ध के शुरू में मान ने, आपको जानकर शायद हैरानी हो, जर्मन राष्ट्रवाद और संस्कृति का काफी पक्ष लिया था। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना भी की थी।
अच्छा।
लेकिन युद्ध की जो भयानक सच्चाई थी, और उसके बाद जर्मनी में जो वाइमार गणराज्य बना, उसके जो अनुभव रहे, उसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। वो धीरे धीरे लोकतंत्र के बहुत मजबूत समर्थक बन गए, खासकर जब उन्होंने नाजीवाद के खतरे को बढ़ते देखा। और फिर तो नाजीवाद की वजह से ही उन्हें 1933 में जर्मनी छोड़ना पड़ा।
ओके जी, जीवन की बात करें तो जन्म 1875 में ल्यूबेक शहर में हुआ। परिवार काफी प्रतिष्ठित था, है ना?
हाँ, बहुत। पिता थॉमस योहान हेनरिक मान अनाज के बड़े व्यापारी थे, शहर के सीनेटर भी थे। वो उस समय के उत्तर जर्मन बुर्जुआ वर्ग के एकदम सटीक प्रतिनिधि थे, कर्तव्यपरायण, व्यवस्थित, परंपरावादी।
और माँ, उनकी पृष्ठभूमि कुछ अलग थी?
बिल्कुल अलग। उनकी माँ यूलिया दा सिल्वा ब्रुहांस आधी जर्मन और आधी ब्राजीलियाई पुर्तगाली क्रियोल वंश की थीं। उनमें एक तरह की कलात्मकता थी, संवेदनशीलता थी। शायद वो अपने पति के उस सख्त अनुशासित माहौल में थोड़ी बाहरी भी महसूस करती होंगी।
तो ये जो कॉन्ट्रास्ट था, पिता की दुनिया और माँ की दुनिया।
हाँ,
पिता की दुनिया कर्तव्य, व्यवस्था, व्यापार, और माँ की दुनिया कला, भावना, जुनून। ये जो बुनियादी विरोधाभास था, यही मान के लेखन का, आप कह सकते हैं, मूल डीएनए बन गया। उनके किरदारों में ये कश्मकश हमेशा दिखती है।
स्कूल वगैरह में कैसे थे वो? पढ़ाई में मन लगता था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था। ल्यूबेक के एक बहुत नामी स्कूल कैथरीनियम में पढ़े जरूर, पर किताबी पढ़ाई, एकेडमिक अनुशासन, ये सब उन्हें कभी रास नहीं आया। रुचि ज्यादा साहित्य और संगीत में थी। फिर 1891 में पिता की मृत्यु हो गई। परिवार के लिए बड़ा झटका था, व्यापार वगैरह सब बंद हो गया, तो वो माँ के साथ म्यूनिक चले गए। म्यूनिक उस समय जर्मनी का एक बड़ा आर्टिस्टिक सेंटर था।
और वहीं से फिर लेखक बनने का रास्ता खुला?
हाँ, कह सकते हैं। म्यूनिक में पहले तो उन्होंने एक बीमा कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने की कोशिश की, जो चली नहीं। फिर वो पूरी तरह लिखने पढ़ने में लग गए। सूची सिर्फ 19 साल के थे जब 1894 में उनकी पहली कहानी छपी, गैफेलिन।
19 साल में?
हाँ, फिर वो अपने भाई हेनरिच मान के साथ इटली गए। हेनरिच खुद भी एक जाने माने लेखक बन रहे थे, और वहीं इटली में रहते हुए उन्होंने अपने पहले महान उपन्यास बुडेनब्रुक्स पर काम शुरू किया, जो काफी हद तक उनके अपने परिवार, ल्यूबेक के माहौल, उसी पर आधारित था।
अब आते उनके मुख्य विचारों पर। अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने विचारों के उपन्यास नॉवेल ऑफ आइडियाज को विकसित किया। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगी?
देखिए, इसका मतलब ये है कि मॉन्क के उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो कहानी के ताने बाने में दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान, यहाँ तक कि मिथकों को भी बड़ी कुशलता से बुनते हैं।
अच्छा।
उनके पात्र अक्सर किसी न किसी बड़े विचार, किसी आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके बीच की बातचीत, उनके संघर्ष, उनके जरिए वो उपन्यास बड़े बौद्धिक सवालों पर बहस करता है। कहानी और विचार एक साथ चलते, एक दूसरे को ताकत देते हैं।
और वो जो केंद्रीय द्वंद्व था, जिसकी हमने पहले भी बात की, व्यवस्थित नागरिक जीवन बनाम कलात्मक, संवेदनशील, शायद बीमार सा जीवन, ये उनके विचारों का एक मुख्य बिंदु रहा।
निश्चित रूप से, ये उनके लिए सिर्फ एक साहित्यिक विषय नहीं था, बल्कि जिंदगी को देखने का, समझने का एक तरीका था। वो निश्चय वाली बात अपोलोनियन बनाम डायनीजियन, तर्क और व्यवस्था बनाम भावना और अराजकता, उन्होंने इसे अपने ढंग से परखा। उनके कई किरदार, जैसे टोनियो क्रॉगर का नायक, इसी कश्मकश में जीते हैं। वो सामान्य, स्वस्थ, बुर्जुआ जीवन की तरफ आकर्षित भी होते हैं, लेकिन कलाकार होने का जो अकेलापन है, जो बोझ है, जो शायद एक तरह की बीमारी है, उसे भी महसूस करते हैं।
आपने पहले लाइट मोटिव का जिक्र किया था, जो उन्होंने वाग्नर से लिया। ये तकनीक उनके उपन्यासों में कैसे काम करती है? कोई उदाहरण दे सकती हैं?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प तकनीक है। जैसे वाग्नर के ओपेरा में कोई खास म्यूजिकल फ्रेज किसी किरदार या मूड से जुड़ जाता है ना,
हाँ,
वैसे ही मान अपने उपन्यासों में किसी खास वाक्य, किसी विवरण, किसी इमेज या प्रतीक को बार बार लाते हैं, और वो चीज किसी पात्र, किसी थीम या किसी स्थिति से जुड़ जाती है। जैसे बुडेनब्रुक्स में दांतों की समस्या का बार बार जिक्र आता है।
अच्छा, दांतों की समस्या।
हाँ, और धीरे धीरे पाठक समझने लगता है कि ये उस परिवार के अंदरूनी तौर पर कमजोर होने, उनके पतन का प्रतीक है। ये लाइट मोटिव कहानी को एक म्यूजिकल क्वालिटी देते हैं, एक सिंबॉलिक गहराई और स्ट्रक्चर भी मजबूत करते हैं।
और उनकी विडंबना, आयरनी वाली शैली, वो कैसे काम करती है?
मान के जो लिखने की आवाज है, जो नरेटर की आवाज है, वो अक्सर थोड़ी तटस्थ सी लगती है, थोड़ी दूरी बनाए रखती है पात्रों से, घटनाओं से, और उसमें एक सूक्ष्म सा हल्का सा व्यंग होता है। वो सीधे सीधे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जिस तरह से वो चीजों का वर्णन करते हैं, जो शब्द चुनते हैं, उससे पाठक और पात्रों के बीच एक आलोचनात्मक दूरी बन जाती है। पाठक सोचने पर मजबूर होता है। ये बहुत सटल आर्ट है।
कलाकार के मनोविज्ञान पर भी उन्होंने काफी लिखा है ना, उसका विश्लेषण किया है।
हाँ, ये उनका एक और बड़ा थीम है। कलाकार समाज से कैसे अलग थलग महसूस करता है, प्रेरणा पाने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, और कभी कभी इस प्रक्रिया में नैतिक रूप से गिरने का खतरा भी रहता है। ये सब उनके लेखन में बार बार आता है।
जैसे डेथ इन वेनिस में।
बिल्कुल, डेथ इन वेनिस का लेखक गुस्ताफ फॉन अशिनबाक या फिर डॉक्टर फॉस्टर्स का संगीतकार एड्रियन लिवरकुन, ये पात्र दिखाते हैं कि कलाकार होना कितना जटिल हो सकता है, रचनात्मकता की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है और उसके अंधेरे कोने क्या हो सकते हैं।
तो क्या ये मानते थे कि साहित्य एक तरह से समाज का आईना है या शायद समाज की बीमारियों का डायग्नोसिस कर सकता है?
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके समय की बड़ी ऐतिहासिक, सामाजिक, बौद्धिक शक्तियों से अलग नहीं हो सकता। उनके पात्र सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते, वो अपने युग के प्रतिनिधि भी होते हैं। उनके निजी संघर्ष अक्सर उनके समाज के बड़े संघर्षों को दिखाते हैं। और मान का मानना था कि साहित्य इन संकटों को सामने लाकर उनका विश्लेषण करके हमें उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।
चलिए अब उनके कुछ खास कामों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत तो जाहिर बुडन ब्रुक्स 1901 से ही करनी होगी, नोबल भी तो उसी के लिए मिला था मुख्य रूप से।
जी हाँ, बुडन ब्रुक्स, ये एक बड़े अमीर व्यापारी परिवार की कहानी है, उनकी चार पीढ़ियों की, और कैसे धीरे धीरे उस परिवार की जो व्यापारिक दुनिया की ठोस जीवन शक्ति थी वो कम होती जाती है और उसकी जगह एक तरह की कलात्मक संवेदनशीलता और शायद कहें एक कमजोरी, एक शह ले लेता है। इसमें यथार्थवाद है, मनोवैज्ञानिक गहराई है और वो लाइट मोटिव तकनीक भी है जिसकी हमने बात की। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये उस बदलते हुए जर्मन बुर्जुआ समाज का उस वक्त का एक बड़ा कैनवस है।
फिर आती है डेथ इन वेनिस 1912। ये शायद उनकी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से, छोटी सी है पर असर बहुत गहरा है।
बिल्कुल, कहानी एक बहुत ही प्रतिष्ठित, अनुशासित, सम्मानित लेखक की है, गुस्ताफ फॉन अशिनबाक। वो वेनिस जाता है और वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़के को देखकर उसके प्रति एक जुनून में पड़ जाता है और इस जुनून में वो नैतिक रूप से और शारीरिक रूप से भी पतित हो जाता है।
तो ये कहानी किस बारे में है? सिर्फ एक व्यक्ति के पतन के बारे में?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये कला, सौंदर्य, हमारी दबी हुई इच्छाएं, क्षय, पतन और शायद पूरे यूरोपीय सभ्यता के अंदर जो एक खोखलापन आ रहा था उसका एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। अगर किसी को मान की दुनिया में कदम रखना हो तो ये किताब एक बेहतरीन शुरुआत है। छोटी है पर उनके लगभग सारे बड़े थीम्स इसमें मिल जाते हैं।
और फिर है द मैजिक माउंटेन 1924। ये तो काफी मोटा बड़ा उपन्यास है।
हाँ, ये तो महाकाव्य जैसा है। कहानी स्विट्जरलैंड में एक टीबी सैनिटोरियम में सेट है। एक नौजवान है हांस कास्टॉप, वो अपने बीमार चचेरे भाई से मिलने कुछ हफ्तों के लिए जाता है और फिर खुद भी वही मरीज बनकर सालों रह जाता है।
अच्छा।
और वो सैनिटोरियम जो है वो पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले के यूरोप का एक छोटा सा मॉडल बन जाता है। वहाँ अलग अलग देशों के अलग अलग विचारों के लोग हैं, उदारवादी, रूढ़िवादी, वैज्ञानिक, रहस्यवादी, और उनके बीच लगातार बहसें चलती रहती हैं।
तो ये उपन्यास किस बारे में है? बीमारी के बारे में?
बीमारी तो एक पहलू है, असल में ये उपन्यास है समय के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में, प्यार के बारे में और सबसे बढ़कर उस समय की पश्चिमी सभ्यता की जो बौद्धिक और आध्यात्मिक अवस्था थी उस पर एक गहरा चिंतन है। इसे अक्सर बिल्डिंग्स रोमान कहते हैं, यानी एक ऐसा उपन्यास जो नायक के बनने, उसके सीखने, उसके विकसित होने की कहानी कहता है।
फिर जब वो नाजी जर्मनी से बाहर चले गए निर्वासन में, तब भी उन्होंने लिखना जारी रखा। जोसेफ एंड हिज ब्रदर्स का जिक्र आता है।
हाँ, जोसेफ एंड हिज ब्रदर्स 1933-1943, ये चार वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा काम है। बाइबल की जो कहानी है जोसेफ और उसके भाइयों की, उस पर आधारित है और इसे उन्होंने निर्वासन के मुश्किल सालों में लिखा।
ये सिर्फ बाइबल की कहानी है या कुछ और भी है इसमें?
ये मिथक, मनोविज्ञान और इतिहास का एक अद्भुत मिश्रण है। मान ने उस प्राचीन कहानी को एक नई मनोवैज्ञानिक गहराई दी और जिस समय ये लिखा जा रहा था यूरोप में नाजी बर्बरता फैल रही थी, तो एक तरह से ये उपन्यास मानवतावाद, मानवीय मूल्यों का एक शक्तिशाली बयान भी बन गया। जोसेफ की कहानी के जरिए वो सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों की बात कर रहे थे।
और आखिर में डॉक्टर फॉस्टस 1947, इसे कई लोग उनका सबसे जटिल, सबसे अंधकारमय उपन्यास मानते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये एक काल्पनिक जर्मन संगीतकार है एड्रियन लेवकून। उसकी कहानी है जो शैतान से एक सौदा करता है, अपनी आत्मा के बदले में उसे 24 साल की अद्भुत जीनियस म्यूजिकल क्रिएटिविटी मिलती है।
फॉस्ट की कहानी का एक नया रूप?
बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ फॉस्ट की कहानी नहीं है, ये सीधे तौर पर जर्मनी ने जो नाजीवाद के साथ एक तरह का सौदा किया उसका एक बहुत ही गहरा, बहुत परेशान करने वाला रूपक है। इसमें कला की नैतिकता, धर्मशास्त्र, संगीत सिद्धांत और जर्मन संस्कृति का जो संकट था उसका बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण विश्लेषण है। कहा जाता है कि इसके संगीत वाले हिस्सों के लिए उन्होंने थियोडोर एडोर्नो जैसे दार्शनिकों से काफी सलाह ली थी।
अपने समय के दूसरे लेखकों के बीच मान कहाँ खड़े थे? उनके भाई हेनरिक मान भी तो लेखक थे, उनसे कैसा रिश्ता था?
भाई हेनरिक मान भी काफी महत्वपूर्ण लेखक थे, पर उनकी शैली और उनके राजनीतिक विचार थॉमस से काफी अलग थे। हेनरिक ज्यादा मुखर थे, ज्यादा राजनीतिक रूप से रेडिकल थे। दोनों भाइयों का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी थी, वैचारिक मतभेद भी थे।
और जर्मनी के दूसरे बड़े लेखक?
उस समय जर्मनी में गेहार्ट होप्टमान, हर्मन हेस, स्टीफन ज्विक जैसे और भी कई बड़े नाम थे, लेकिन मान की जो बौद्धिक गहराई थी, उनकी वो खास विडंबना वाली शैली और विचारों को कहानी में बुनने की जो कला थी, वो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। बाद में जब वो अमेरिका में निर्वासन में थे तो बर्थोल्ड ब्रेश्ट, आर्नोल्ड शॉनबर्ग जैसे कई और बुद्धिजीवियों के संपर्क में आए।
उनकी विरासत क्या है, आज वो कितने प्रासंगिक हैं?
देखिए, मान की प्रतिष्ठा समय के साथ कम नहीं हुई बल्कि बड़ी ही है। वो सिर्फ एक जर्मन लेखक नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक स्तंभ माने जाते हैं। 1929 में नोबेल पुरस्कार मिला ही था। और एक दिलचस्प बात है, 1949 में जब जर्मनी दो हिस्सों में बंट चुका था, पश्चिमी और पूर्व, तो उन्हें पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से और पूर्वी जर्मनी के वाइमर शहर से दोनों जगह से प्रतिष्ठित गोथे पुरस्कार मिला।
अच्छा, ये तो काफी सिंबॉलिक है।
हाँ, ये दिखाता है कि उन्हें एक ऐसी सांस्कृतिक हस्ती के रूप में देखा जा रहा था जो उस बटे हुए जर्मनी को भी जोड़ सकती थी। और उनका असर बाद के लेखकों पर बहुत गहरा पड़ा है। गुंटर ग्रास से लेकर सलमान रुश्दी और हान पामुक तक कई बड़े लेखकों ने माना है कि वो मान से प्रभावित रहे हैं।
70 के दशक में उनकी डायरियों के छपने से भी काफी कुछ बदला है ना?
हाँ,
उनके बारे में हमारी समझ।
हाँ, उनकी निजी डायरिया जो छपी तो उनके काम को और उन्हें एक व्यक्ति के रूप में देखने का एक नया नजरिया मिला। उनसे उनके गहरे आंतरिक संघर्षों का पता चला, खास तौर पर उनकी जो दमित समलैंगिक भावनाएं थीं, उनका जिक्र था।
हाँ।
इससे उनके उपन्यासों में जो एक मनोवैज्ञानिक तनाव रहता है, कला और वर्जित इच्छाओं के जो विषय हैं, उन्हें समझने में और मदद मिली। ये पता चला कि उनका जो एक गरिमामय सार्वजनिक व्यक्तित्व था, उसके पीछे एक बहुत ही जटिल, बहुत ही संवेदनशील आंतरिक जीवन भी था।
क्या उनके उठाए गए मुद्दे, उनके विषय आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं?
मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा। आप सोचिए, सांस्कृतिक संकट, लोकतंत्र बनाम तानाशाही, या आजकल जिसे लोक लुभावनावाद कहते हैं उसके बीच का तनाव, राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या हैं, विश्व बंधुत्व क्या है, समाज में कला की भूमिका क्या होनी चाहिए, राजनीतिक और नैतिक पतन कैसे होता है, ये सारी चिंताएं ये आज भी उतनी ही बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक हैं। उनका काम पढ़ते हुए कई बार लगता रे, ये तो हमारे ही समय की समस्याओं का पूर्वानुमान कर रहे थे।
उनकी कुछ कथन भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे डेथ इन वेनिस का वो वाक्य कि एकांत हमें मौलिकता को जन्म देता है, अपरिचित और खतरनाक सुंदरता को, कविता को, लेकिन यह विपरीत को भी जन्म देता है, विकृत, अवैध, बेतुका। कितनी सटीकता से पकड़ता है ये कला और खतरे के बीच के रिश्ते को।
हाँ बिल्कुल, या उनका वो कहना कि एक लेखक वह होता है जिसके लिए लिखना अन्य लोगों की तुलना में अधिक कठिन होता है। ये मजाक में कहा गया लगता है, पर दिखाता है कि उनके लिए लेखन कितना गंभीर, कितना मेहनत का काम था। और निर्वासन के दौरान उनका वो बहुत मशहूर कथन है, जहां मैं हूं वहां जर्मनी है, मैं अपनी जर्मन संस्कृति को अपने भीतर रखता हूं। ये एक तरह से नाजी बर्बरता के सामने सच्ची जर्मन मानववादी परंपरा के अकेले प्रतिनिधि होने का उनका दावा था। बहुत शक्तिशाली बयान था ये।
कुछ और रोचक बातें ये कम ज्ञात पहलू उनके बारे में?
हाँ, जैसे हमने बात की, शोपेनहावर, नीचे और वैगनर, ये तीन उनके बौद्धिक आदर्श थे, उनके तीन सितारे। डॉक्टर फॉस्टस के लिए उन्होंने अडोनो और शॉनबर्ग जैसे संगीतज्ञों और विचारकों से बाकायदा सलाह ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बीबीसी रेडियो से जर्मन लोगों के लिए नाजी विरोधी भाषण दिए, जो डॉयचे हॉरर के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत प्रभावशाली थे।
अच्छा।
युद्ध के बाद वो अमेरिका में बस गए थे, कैलिफोर्निया में, लेकिन 50 के दशक में वहाँ जो मैकार्थीवाद का दौर आया, कम्युनिस्ट विरोधी जो माहौल बना, उससे उनका मोह भंग हो गया। उन्हें लगा कि अमेरिका भी असहिष्णु हो रहा है, तो वो यूरोप लौट आए, लेकिन वो वापस जर्मनी नहीं गए।
जर्मनी क्यों नहीं गए?
शायद उन्हें बटा हुआ जर्मनी रास नहीं आया, या शायद वो उस माहौल से दूरी बनाए रखना चाहते थे। वो स्विट्जरलैंड में बस गए, ज्यूरिख के पास, और वहीं 1955 में उनका निधन हुआ।
अंत में अगर हम सोचें तो थॉमस मैन हमें किस एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं? क्या है उनकी विरासत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू?
मेरे ख्याल में उनका पूरा काम हमें लगातार एक बहुत ही मुश्किल और जरूरी सवाल से जूझने पर मजबूर करता है। वो सवाल ये है कि उच्च संस्कृति, कला, बौद्धिक उपलब्धि, इनका समाज के राजनीतिक और नैतिक स्वास्थ्य से क्या रिश्ता है।
मतलब
ये कि क्या महान कला और महान विचार सामाजिक या राजनीतिक पतन के साथ साथ मौजूद रह सकते हैं? क्या कला हमें उस पतन से बचाती है, या उसे अनदेखा करती है, या कहीं अनजाने में उसे संभव भी बनाती है? जैसे डॉक्टर फाउस्टस में एड्रियन लिवरकून अपनी कला के लिए शैतान से सौदा कर लेता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या इसमें कोई गहरी सच्चाई छुपी है?
ये वाकई एक गहरा सवाल है कि हम अपने समय में कैसे संतुलन बनाते हैं। एक तरफ कला और विचार का वो एकांत प्रिय आंतरिक जीवन है, और दूसरी तरफ समाज के प्रति हमारी नागरिक जिम्मेदारी, हमारी ऐतिहासिक जागरूकता की बाहरी मांगे हैं। ये तनाव, ये कश्मकश, शायद यही वो चुनौती है जो मान की विरासत आज भी हमारे सामने रखती है।
बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।